ओम शांति। आकाश में विचरण करने वाले एक फरिश्ते ने एक दिन सोचा, इस भूमंडल की यात्रा की जाए, और उसमें भी उसने भारत का नाम सुना था, तो वो भारत देश को देखने इस भारत भूमि पर उतरा। भारत के तीर्थों पर घूमा, पहाड़ों को देखा, वनों को देखा, नदियों को, धार्मिक स्थानों को, और जब पूरी तरह देख लिया तो उसका दिल नहीं हुआ वापस जाने का, परंतु उसे जाना तो था, तो उसने सोचा क्यों ना जाते जाते किसी को कुछ देकर जाऊं। और जब ऐसा सोचा ही था तो देखा सामने से चार तपस्वी, चार योगी आत्माएं आ रहे, तो वो उन चारों के सामने जाता है और वो फरिश्ता कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। वो खुश हो जाता है कि मेरे सामने ऐसे तपस्वी लोग आए, इतने धार्मिक, जिन्होंने अपना जीवन ईश्वर के प्रति अर्पित कर दिया, तपस्या के लिए दे दिया। तो वो उनसे पूछता है कि आपको जो भी मांगना है आप मांग सकते हो। तो पहला योगी जो होता है वो मांगता है, कितने वर्षों से मैं तपस्या कर रहा हूं परंतु शांति जरा भी प्राप्त नहीं हुई, जीवन अब भी संघर्ष है और संघर्ष संघर्ष और संघर्ष, कितना मैं लड़ू और कितना मैं संघर्ष करूं, मुझे शांति चाहिए। फरिश्ते ने कहा परंतु संघर्ष ही तो जीवन है और उसी से शांति निकलेगी। वो कहता है नहीं, मैंने सब कुछ कर लिया, आप यदि कुछ देना ही चाहते हो तो शांति दे दो। तो वो फरिश्ता कुछ कहता है और ये मनुष्य, ये योगी दूर किसी खेत में एक गाय बन जाता है, एकदम शांत, कोई संघर्ष नहीं। जो संघर्ष था वो समाप्त। वो कहता था मुझे शांति चाहिए, शांति मिल गई। दूसरे को पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहता है भगवान इतना पवित्र है, मैं इतना पवित्र क्यों, मुझे पवित्रता चाहिए। ये जो इच्छाएं हैं, ये जो तृष्णाएं हैं, ये जो वासनाएं हैं, इससे मैं कब से लड़ रहा हूं, परंतु पवित्रता आ नहीं रही, मुझे आप पवित्रता दे दो। फरिश्ता कहता है परंतु उस पवित्रता तक तो तुम्हें खुद ही स्वयं के प्रयत्न से पहुंचना पड़ेगा। वो कहता है नहीं, मुझे अभी के अभी पवित्रता दे दो, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। तो वो योगी आंखें बंद करता है और दूर एक मंदिर में जाकर मूर्ति बन जाता है, संपूर्ण पवित्र। अब कोई इच्छा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। तीसरा योगी से फरिश्ता पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, वो कहता है मुझे परफेक्शन चाहिए, संपूर्णता। फरिश्ता उसे समझाता है कि संपूर्ण कोई है नहीं संसार में, परफेक्ट कोई नहीं है। वो कहते हैं परफेक्शन के अलावा मैं जरा भी कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे परफेक्शन ही चाहिए, तो अगले ही क्षण वो अदृश्य हो जाता है, क्योंकि इस धरती पर परफेक्ट कुछ भी नहीं है, गायब हो जाता है। अब चौथा योगी बचता है, वो फरिश्ता उससे पूछता है तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या, वो झूम रहा है, वो नाच रहा है, वो गा रहा है, वो कहता है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं वैसे ही खुश हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी मुझे मिला है, जो भी मुझे प्राप्त है, मैं उसी में खुश हूं, और प्रभु के गुण गाने लगता है, उड़ने लगता है, नाचने लगता है और आगे निकल जाता है। परंतु फरिश्ते को बहुत आश्चर्य होता है, ये कैसा मानव है, कैसा युवक है, कुछ भी नहीं मांगता, परंतु उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी भी होती है कि ऐसा भी कोई प्रेमी है कि जिसे कुछ नहीं चाहिए, और वो फरिश्ता उस योगी को गले मिलता है और वहां से चला जाता है। कहानी यहां नहीं पूरी होती, फरिश्ता अपने घर पहुंचता है, स्वर्ग भगवान के घर, भगवान कहते हैं इतना लेट क्यों कर दिया तुमने धरती पर। वो कहता है मैं क्या करूं, मुझे जरा मोह हो गया था धरती वासियों से, तो तुमने किया क्या। वो कहता है मैंने कुछ लोगों की इच्छाएं पूर्ण की। भगवान कहते क्या तुम्हारी भी कोई इच्छा है क्या। वो कहते हाँ एक इच्छा जरूर है, मुझे आप धरती पर भेज दो और वो जो चौथा योगी था वैसा बना दो, जिसकी कोई इच्छा नहीं, जो निरंतर केवल आपके गुण गाता रहे, केवल आपसे प्यार करता रहे, और इस संसार का उसे कुछ भी नहीं चाहिए, मांगना पुकार समाप्त हो गई है, कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, कुछ भी नहीं, वो केवल आपसे प्रेम करता है और कोई स्वार्थ नहीं, किसी को देखकर नहीं, केवल और केवल आपके लिए, लव फॉर लव सेक, मुझे आप ऐसा बना दो। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे कुछ भी नहीं चाहिए, एक प्रभु प्रेम ही उसके हृदय में है। तो आज बाबा ने किन बच्चों को देखा, किनको देखा, स्नेही को देखा और किसको देखा, सहयोगियों को देखा और किसको देखा, और शक्तिशाली आत्माओं को देखा, किस स्थान पर देखा, किस स्थान पर देखा, ये भूमि कौन सी है, किस स्थान पर आ गए, सर्दी गर्मी सहन करते हुए, धूल मिट्टी सहन करते हुए, खान पान को न देखते हुए कहां पर पहुंच गए, 3 फुट नहीं तो 2 फुट भूमि मिल गई, और किस भोजन के अधिकारी बन गए, जिसका एक कणा भी असंख्य अमूल्य मूल्यों की तरह है। कौन सी भूमि है ये, क्या कहा बाबा ने, कहां पहुंच गए, कहां आ गए। इस भूमि के लिए नाम गिनाए हैं बाबा ने कुछ, कहां आ गए, छत्र छाया के अंदर आ गए, कहां आ गए, यज्ञ की श्रेष्ठ भूमि में, धरणी में आ गए, कहां आ गए, प्यार की पालना में आ गए। इसलिए कहा एक मिनट भी वंचित ना हो मिलन से, ऐसा योग इस भूमि में, एक मिनट भी, एक सेकंड भी ये मिलन, परमात्मा मिलन वंचित ना हो, तो ये प्यार की पालना की भूमि है, ये छत्र छाया है, और ये यज्ञ की श्रेष्ठ धरणी है। अगर यहां आ गए तो वैसा ही चिंतन वैसा ही मनन, वैसे ही संकल्प, वैसे ही भावनाएं श्रेष्ठ हो जाए। दो प्रकार की भावनाएं हैं, एक है स्नेह, एक है प्रेम। दोनों में क्या अंतर है? स्नेह और प्रेम दोनों में क्या अंतर है? स्नेह और प्रेम, और भी ढेर सारे शब्द हैं, प्यार, उल्फत, मोहब्बत, इश्क, ये तो दूसरे शब्द हैं। स्नेह और प्रेम में क्या अंतर है? इंग्लिश में तो सारे शब्दों के लिए बस एक ही शब्द है, लव, अफेक्शन, पर स्नेह और प्रेम में क्या अंतर है? स्नेह में अलौकिकता और प्रेम में लौकिकता, ये परमात्म प्रेम है, तो इसमें लौकिकता हो गई फिर तो। स्नेह वात्सल्य की भावना है, प्रेम श्रृंगार की भावना है। संसार की दृष्टि से, संसार की परिभाषा, स्नेह वात्सल्य की भावना है। एक स्त्री को जो अपने बच्चे से है वो क्या है? स्नेह है। और एक स्त्री को अपने पति से जो है वो क्या है? वो प्रेम, वो जो लगाव है, वो जो प्यार है। और एक दूसरी बात, स्नेह में प्रेम तो है पर साथ में सम्मान जुड़ा हुआ है। तो स्नेह अर्थात प्रेम और सम्मान दोनों है जहां पर। वैसे तो सब एक ही शब्द है, चाहे प्रेम कहो, प्रीत कहो, प्यार कहो, मोहब्बत कहो, इश्क कहो, उल्फत कहो, लव कहो, अफेक्शन कहो, वात्सल्य कहो, लगाओ, आसक्ति, ये थोड़े अलग प्रकार के शब्द है, अनुरुक्ति, अनुरक्ति, ये अलग अलग शब्द है। तो बाबा किन आत्माओं को देख रहे हैं? जो स्नेही है और जो सहयोगी है और जो शक्तिशाली है। तो चार प्रकार के स्नेही और तीन प्रकार के सहयोगी और तीन प्रकार के शक्तिशाली आत्माएं, इनमें से मैं कौन हूं? सच्चाई से अपनी स्वयं की हरेक चेकिंग करे कि मैं कहां पर सेट होता हूं और फिट होता हूं, मैं इनमें से हूं कौन? और स्वयं को देखना है, दूसरों को नहीं, कि बाबा ने आज ये कहा तुम ये हो, ये पॉइंट खास तुम्हारे लिए थी आज। अनुमान नहीं लगाना, हनुमान बनना, किसी मुरली में बाबा ने कहा था, तुम्हें अनुमान नहीं लगाना है, क्या करना है? हनुमान बनना है। तो सबसे पहले है स्नेही आत्माएं, उसकी चार कैटेगरीज है। सबसे पहले वाले है, क्या पांचवी भी कोई हो सकती है जिसमें ये चारों है? ऐसा बाबा ने बोला तो नहीं, चार ही गिनाए। सबसे पहले वो है जो कैसे स्नेही बने, क्यों भगवान से इतना प्यार है उनको? क्योंकि दूसरों को देखा, दूसरे के जीवन का परिवर्तन देखा, दूसरे के जीवन का कुछ अनुभव देखा, दूसरों को देखकर उनके हृदय में परमात्मा प्रेम जगा, और जिसको देखकर जगा वो यदि छोड़ के चला जाए तो उसकी पूछ पकड़कर वो भी बाहर। यहां कोई ना कोई आधार है, दूसरों को देखना है, किसी दूसरों को देखकर आया हुआ प्रेम। दूसरी कैटेगरी, खुद थोड़े बहुत अनुभव हो गए किसी गुण का, थोड़ा सा सुख मिल गया, थोड़ी सी शांति मिल गई, शायद किसी और संस्था में गए होते तो वहां पर भी मिल गया होता और वहां पर भी चिपक गए होते, फिर यहां आए ही नहीं होते। क्योंकि सुख शांति तो थोड़ी बहुत हर धार्मिक सत्संग में मिल ही जाती है। आ गए यहां पर और मिल गई, तो उसके आधार पर प्रभु प्रेम, प्रभु स्नेह, परमात्मा प्रेम, डिवाइन लव, गॉडली लव, ईश्वरीय स्नेह प्रकट हुआ है। तीसरे, घर में उधर कोई नहीं, इधर अच्छा संगठन सा मिल गया, अच्छा कोई श्रेष्ठ आधार मिल गया, कोई सहारा, उस सहारे के, उस आधार के आधार पर यहां टिक गए। इस प्रभु प्रेम में ऐसी भी आत्माएं हैं। तो ये तीन प्रकार की गिनाई, पहले वो जो दूसरों को देख कर आए, दूसरे वो जो खुद थोड़े बहुत अनुभव हो गए, और तीसरे संगठन या संघ को देखकर, और चौथी भी आत्माएं हैं। वो कौन सी? वो परमात्मा स्नेही आत्माएं हैं, जिन्होंने भगवान को वो जो है और वो जैसा है उसी रीति से उसको जाना है, समझा है। उन्हें उससे कुछ भी चाहिए नहीं। लव फॉर लव सेक, जैसा वो चौथा योगी झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, उसका प्यार किसी पर आधारित नहीं है, किसी संगठन पर आधारित नहीं है, किसी सेवा पर भी हमारी खुशी का आधार नहीं है, क्योंकि सेवा आज है शायद कल नहीं रहेगी, सेवा आज है कल शायद छीन ली जाएगी। क्या ब्राह्मणों की खुशी का आधार सेवा है? यह हो सकता है, सेवा से खुशी मिलती है वो दूसरी बात है, परंतु आधार सेवा नहीं है। आधार कोई संगठन नहीं है, आधार कोई व्यक्ति नहीं है, स्वयंभू हमारी खुशी स्वयं स्वस्फुरित सेल्फ इंस्पायर्ड ऐसा परमात्मा प्रेम। तो चारों में से हम कौन हुए? चौथे वाले, चौथा ठीक लग रहा है। शायद कोई ऐसे भी होंगे जिनमें चारों ही है, देखा किसी को प्रभावित हो गए और फिर आए। पिछले संडे था सब प्रभाव पर, देखा और आ गए, या फिर कुछ छोटे मोटे अनुभव हो गए और फिर संगठन का भी सहारा मिल गया और अपना भी प्रेम है, चारों भी चीजें हैं। तो ये पांचवी कैटेगरी भी है फिर, कि जिसमें, और शायद ये सबसे ज्यादा है कि जिसमें सब थोड़ा 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 हो गया, किसी के जीवन को देख लिया बहुत अच्छा लगा, व्हाइट कपड़ों को देख लिया बहुत आकर्षण हुआ कि ये कुछ तो है, तो ये स्नेही आत्मा है। तो स्वयं को देखना है, हमारा परमात्मा स्नेह कैसा है, कितना है, कैसे उसको बढ़ाए, क्या करे जिससे ये प्रेम बहुत बढ़ जाए और बढ़ जाए और बढ़ जाए। इस प्रेम में कंपटीशन, इस प्रेम में रेस, कि सबसे अधिक प्रेम हमारा हो उससे। दूसरी कौन सी आत्माएं है? सहयोगी। उनकी भी तीन कैटेगरीज है। पहली भक्ति मार्ग यहां पर भी चालू है, बातें अच्छी है यहां की, यह स्थान अच्छा है, इनका जीवन अच्छा है, और जो फल प्राप्त होता है वो भी अच्छा है। इस आधार पर और थोड़ी बहुत प्राप्ति हो गई, थोड़ा बहुत तन मन धन लगा दिया, इस आधार पर सहयोगी हुई हुई आत्मा है। यह सबसे पहली कैटेगरी। दूसरी, ज्ञान योग की धारणा के आधार पर सहयोगी बनी है, थोड़ा बहुत ज्ञान योग भी है उसके बाद सहयोगी बनी है। और तीसरी जो है वो एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप से ही सर्व प्राप्ति, ये एक ही स्थान है जहां सर्व प्राप्ति है, जो बाप का घर वो मेरा घर, जो बाप की सेवा वो मेरी सेवा, एक ही श्रेष्ठ ईश्वरीय सेवा, एक तरफ बुद्धि। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक मेहतरनी जो साफ सफाई करती है, किसी रास्ते से जा रही है और उसके मन में विचार चलते रहते हैं, क्योंकि अभी अभी भक्ति का जन्म हुआ है हृदय में, सोचती अपना सारा जीवन ईश्वरीय सेवा में लगा दूं, कब तक इस तरह का ये कार्य करती रहूं, मुझे तो बस केवल प्रभु की सेवा करनी है, दिन रात उसी का चिंतन मनन, अपने जीवन को उसी के चरणों में अर्पित कर दूं। फिर ख्याल आता है कि नहीं, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, इधर भी जाना है, इधर भी तोड़ निभाना है। ऐसी उधेड़बुन में वो चल रही होती है तो सामने से एक साहूकार आ रहा होता है। वो जब देखता है एक क्षुद्र नारी, रास्ता छोटा और वहीं से जा रही है, कहीं इसका पल्लू बिल्लू मुझे लग गया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा, जोर से चिल्लाता है वो उसको, ए मेहतरनी एक तरफ हट जा। वो उसको कहता है एक तरफ हट जा, और जैसे ही वो सुनती एक तरफ हट जा, प्रकाश आ जाता है एकदम। अब तक जो कंफ्यूजन था, उधेड़बुन थी संकल्पों की, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये करूं या वो करूं, एक तरफ हट जा और निर्णय कर लेती है, बस अब ये जीवन केवल प्रभु के लिए और किसी के लिए नहीं। और वो उसको धन्यवाद देती है बहुत कि आपने मार्गदर्शन कर दिया। उसने कहा किस भाव से, इसने समझा किस भाव से, वो आलोचक वो निंदक, परंतु वो निंदा चिकित्सिका बन गई। चिकित्सिका, एक निंदक का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, फायदा, वो एक डॉक्टर की तरह है, जहां घाव है और वह मवाद है, उसको चीर के वो मवाद बाहर निकलता है, निकालता है। तो निंदक की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और जो गुलाब का फूल होता है उसमें सबसे ज्यादा खाद की आवश्यकता होती है, बाकी फूलों से जितनी ज्यादा खाद उतना ही वो गुलाब, अगर कहे कि ये दुर्गंध मुझे नहीं चाहिए ये खाद, तो वो सुगंधित पुष्प भी नहीं उगेंगे। तो कहने का भाव, वो निंदा के स्वरों में वो कहता है, परंतु उसके लिए वो उपदेश बन जाता है। तो क्या करना है, एक तरफ हट जाओ, अब उधर देखना ही नहीं है, वो संसार हमारा है ही नहीं, भिकारी तमोप्रधान पापाचार भ्रष्टाचार वो सिनेमा, और वो उनके अंदर काम करने वाले लोग ब्राह्मणों को क्यों आकर्षण है उनसे, तुम्हें तो किसके चित्र को देखना है, रात को किसके सामने बैठ जाओ और सोचो, लक्ष्मी नारायण ये तुम्हारे हीरो और हीरोइन है, इनके फैन बनना है, संसार के हीरो हीरोइन का फैन नहीं बनना है, वैराग आ जाए उनसे, संसार के मूवीज फिल्म्स टेलीविजन सीरियल्स बड़ी माया है, ब्राह्मणों को भी आकर्षित करती है, और वहां के खेल और वो मैचेस और समय उसमें जाता है। उस दिन भी कह रहे थे विश्वरतन दादा ने, बार बार कहा है विनाश का कोई ठिकाना नहीं, तुम्हें दिन रात तपस्या करनी है। क्या हम देख रहे हैं और क्या हम सुन रहे हैं और कौन से गीत गुनगुना रहे हैं? टाइम वेस्ट। तो क्या हो जाना है, एक तरफ हट जाओ। जैसे वो नकी पर देखा होगा बड़ा झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते हैं, किधर तो किधर देखती है, बस एक तरफ, उधर नहीं देखती, एक ही तरफ देखना, एक से ही सर्व संबंध, एक से ही सर्व प्राप्ति, एक से ही सब कुछ, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक से प्यार, एक से सर्व संबंध, एक से सारे रिश्ते नाते, एक से बुद्धि योग संसार जैसे मिट गया हो, ये संसार और संसार के सुख और व्यक्ति हमारे लिए नहीं है। हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन है, पवित्र जीवन है, महान जीवन है, प्रभु सेवा अर्पित जीवन है। तो सहयोगी आत्माओं में तीन हैं। पहले अच्छा है, साफ सफाई अच्छी है, पर्दे भी अच्छे हैं, भोजन तो बहुत ही बढ़िया है, बातें अच्छी है, जीवन अच्छा है, फल भी अच्छा है, यहां आकर सेवा करो, इस आधार पर सहयोगी बने थोड़ा बहुत। दूसरे थोड़ा बहुत ज्ञान योग है, परंतु तीसरे तो वो प्रेमी है, वो परमात्मा स्नेही है, जिनके लिए प्राप्ति भगवान ही है, वही प्राप्ति है सबसे बड़ी, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। उसका दिया हुआ जो है वो अलग, परंतु वो स्वयं ही प्रसाद है, उनके प्रेम का वही फल है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। और उससे कोई कंप्लेंट नहीं, उससे कोई शिकायत नहीं, कमरा अच्छा नहीं है, सेवा बदलने की कोई विधि, कोई कंप्लेंट नहीं, किसी बात की कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट से मुक्त हृदय है, जो है उसे स्वीकार कर लिया है। जैसे दिखाया है, एक व्यक्ति होता है जिसके पास एक गाय होती है, पर उसका पड़ोसी होता है वो एक भैंस लेकर आ जाता है, उसकी भैंस जो होती है पड़ोसी की ज्यादा दूध देती है, और ये गाय बहुत ही कम दूध देती है, इतना परेशान हो जाता है वो, क्या करूं, भगवान से प्रार्थना करता है, भक्त है, कि हे प्रभु कुछ भी कर परंतु इसकी भैंस को मार दे, इसकी ये जो काली भैंस है ये मर जाए। तो वो दूसरे दिन उठता है और उसकी गाय मर जाती है। तो भगवान से कहता है, तुमने ये कैसी गलती कर दी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि भैंस काली थी और मेरी गाय सफेद, तुमने भी गलती कर दी। भगवान के प्रति शिकायत का भाव है, हर चीज में शिकायत है, जीवन में ही शिकायत है, ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। शायद ड्रामा के राजों को समझा नहीं है गहराई से, इसके लिए इतने प्रश्न है मन में, इतने प्रश्न है, और हमारे किसी भी प्रश्न का उत्तर हम पाते हैं कि कोई भी नहीं दे पाता। शायद उत्तर की ये खोज ही गलत है, शायद प्रश्न ही गलत है, प्रश्न नष्ट हो जाए, प्रसन्न चित्त प्रश्न चित्त नहीं। तो ये हो गई तीन सहयोगी आत्माएं। अभी तीन प्रकार की शक्तिशाली आत्माएं, वो कौन सी? सबसे पहली कैटेगरी जो ज्ञान के आधार से जिन्होंने जाना है और जो चिंतन करती है, ये भी कोई शक्तिशाली में ही है, ये तीनों भी कमजोर वाली आत्माएं नहीं है, वीक सोल्स नहीं है, पावरफुल सोल्स है तीनों भी। और शक्तिशाली बनने का एक आधार तो चिंतन है। तो पहली कैटेगरी की आत्माएं चिंतन करती है, पहली श्रेणी जानती है ज्ञान के आधार से, क्या जानती है, मैं शक्ति स्वरूप हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं, यह स्मृति है। परंतु जैसे ही स्मृति विस्मृति हो जाती है तो क्या हो जाता है, शक्ति खत्म। जरा भी माया का प्रभाव आ जाता है, विस्मृति भूल, केवल जब तक याद है तब तक ठीक है, ये कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी वर्णन करना, भाषण देना, बोलना, समझाना। और जब तक वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वर्णन करना एक सेवा है और वो सेवा का फल तो मिलेगा, परंतु तब तक ही शक्तिशाली है जब तक बोल रहे हैं। बोलना खत्म, वापस कमजोरी, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी वो बोलना भी माया बन सकती है, क्योंकि माया के भिन्न रूप है। तो दूसरा, पहला वर्णन करने वाले और दूसरा, पहला चिंतन करने वाले और दूसरा वर्णन करने वाली आत्माएं। तीसरी कौन सी है? तीसरी जो है वो सदा वाली है, उनकी 10 क्वालिफिकेशंस है। टोटल 10 बातें होनी चाहिए। क्या मैं वो तीसरी आत्मा हूं? यदि हम अपने आप को चेक करें तो शायद पता चले कि हम वो है जिनको याद करना पड़ता है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। और जिस दिन भूलते हो, जिस समय भूलते हैं, उस समय कमजोरी आ जाती है और उस समय माया का आक्रमण हो जाता है। एक जगह बाबा ने कहा, माया आकर नमस्कार करती है या माया तुम्हें क्या बना देती है? मिकी माउस तो नहीं बना देती है। ईस्टर्न ग्रुप से मुलाकात, तुम ज्ञान सूर्य हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो, मास्टर दाता हो। जैसे सूर्य सबको देता है, तुम भी देते हो। जहां सूर्य है वहां अंधकार नहीं, तो वैसे हम हैं। किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार नहीं हो सकता। तुम अपने जीवन का सूर्य निरंतर उदित होता हुआ रखो, कि सूर्य निरंतर उदय हुआ हो, कभी अस्त हो ही नहीं ज्ञान का सूर्य, तो अंधकार आएगा ही नहीं। क्योंकि अंधकार तब आता है जब ज्ञान लुप्त हो जाता है, ज्ञान समाप्त हो जाता है। सबसे बड़ा यज्ञ गीता में कहा है, 4 प्रकार के यज्ञों में ज्ञान यज्ञ है। क्योंकि ज्ञान ही नहीं तो अंधकार, और ज्ञान ही नहीं तो विस्मृति, और ज्ञान ही नहीं तो भूले होती रहेगी, कुछ ना कुछ भूले होती ही रहेगी, सूक्ष्म सूक्ष्म। इसके लिए इस विश्वविद्यालय में ज्ञान प्रथम विषय है। और बाबा ने कहा, ये स्टूडेंट लाइफ है, दिन रात अध्ययन करते रहना है, दिन रात पढ़ते रहना है, दिन रात मनन करते रहना, चिंतन करते रहना, उन आत्माओं के संग में रहना जो ज्ञान में रुचि रखते हैं। नहीं तो चहुओर वेस्ट ही वेस्ट है, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, रिसोर्सेस वेस्ट, फूड वेस्ट। आज ही का वरदान है ना, समय और संकल्प। बैंक खुली है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। जिसने समय को सफल किया, समय उसकी बलिहारी गाएगा, और जिसने समय को नष्ट किया, एक दिन समय उसको नष्ट कर देगा। 24 घंटे हम क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है? कौन से विचार चल रहे हैं? ज्ञान योग के विचार चल रहे हैं? ज्ञान की प्लानिंग चल रही है या व्यर्थ की प्लानिंग चल रही है? क्या कर रहे हैं? तो शक्तिशाली आत्मा बनना है। शक्तिशाली अर्थात जो सदा शक्तिशाली है। तो उसके बाबा ने 10 बातें बताई है। सबसे पहली, शक्तिशाली अर्थात स्वरूप, उसे ये रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। परंतु हाँ, ये रिपीट करना भी विधि है स्वरूप बनने की। चिंतन और वर्णन जो पहली 2 कैटेगरी है, तीसरी तक पहुंचने की शायद वो विधिया है। इसके लिए वो पहली 2 भी होती रहे। तो सबसे पहली चीज शक्तिशाली आत्मा अर्थात क्या है? वो स्वरूप है, एम्बॉडीमेंट है। वो स्मृति स्वरूप है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। और उसकी श्रेष्ठतम विधि है बीज रूप योग। परम धाम में ज्योतिबिंदु शिव बाबा से कंबाइंड हो जाना, वो विधि है उसकी। अधिक से अधिक अमृत वेला योग, पंजाब ग्रुप से कहा बाबा ने। क्या कहा? अमृत वेला झुटका नहीं, अमृत वेला आलस्य नहीं, अमृत वेला समर्थ होकर बैठो, नंगे पांव भी आ जाते। अमृत वेला समर्थ, अमृत वेला झुटका नहीं, अमृत वेला आलस्य नहीं। चाहे टेम्परेचर 0 होने दो या माइनस में जाने दो, प्रकृति अपनी जगह, हमारा अमृत वेला अपनी जगह, प्रकृति जीत है, हम ठंडी गर्मी हार जीत हानि लाभ स्थित प्रज्ञ योगी इन सब में समान रहता है। प्रकृति की कोई भी हलचल हमारे पुरुषार्थ को हलचल में ना लाए, पुरुषार्थ एक रस निरंतर चालू रहे, जितने बजे उठते थे उतने ही बजे उठना चालू रखना है जो पहले अमृत वेला। ऐसा नहीं कि ठंड है तो टाइमिंग चेंज, तो झुटका नहीं, आलस नहीं और समर्थ, ये विशेषता बताई बाबा ने पंजाब वालों की। तो शक्तिशाली आत्माओं की निशानियों में सबसे पहली निशानी है स्मृति स्वरूप, सबसे पहली निशानी है शक्ति स्वरूप, सबसे पहली निशानी है, उनको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूं, स्वतः ही शक्तिशाली है। पर साधना भी तो की है, अभ्यास भी किया है, उपासना की है, शक्ति की उपासना, इसलिए ऐसे शक्तिशाली बने कि 24 घंटे के किसी 10 मिनट भी यदि कोई कमजोर हो जाए और 10 मिनट भी पुरानी स्मृति आ जाए या दैहिक इच्छाएं जागृत हो जाए तो उसे सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। सबसे पहला स्वरूप, दूसरा कंबाइंड, कैसे रहेंगे वो बाप के साथ, कंबाइंड रहेंगे, इस कंबाइंड स्वरूप का अनुभव, और इसका सबसे गहरा अनुभव होगा परम धाम में अमृत वेला। धीरे धीरे इसी योग को बढ़ाना है बस, वो बिंदी और मैं बिंदी उसमें समा गई, वो स्टार और मैं स्टार, वो सागर मैं उसमें समा गई, वो ज्योति मैं उस ज्योति में समा गई, वो बीज मैं उस बीच में समा गई, फिर वो जो वो मैं, वो अकाय मैं भी अकाय, वो मृत्युंजय मैं भी मृत्युंजय, वो अभोक्ता वो अकर्ता मैं भी अभोक्ता मैं भी अकर्ता, वो कर्मातीत कर्म से परे मैं भी कर्मातीत, वो बिंदु वो अभूल का सागर मैं भी अभूल का सागर, वो साक्षी मैं भी साक्षी, वो डिटैच्ड संसार से मैं भी डिटैच्ड, वो अनासक्त निर्मोह का सागर मैं भी निर्मोह का सागर, जो वो मैं, इस स्थिति में परमधाम में बीज रूप पॉइंट लाइट उसमें स्थित हो जाना, शरीर भूल जाए, संबंध भूल जाए, व्यक्ति भूल जाए, सब भूल जाए, जितनी उसकी साक्षी स्थिति है वही मैं, वो कंबाइंड रूप। फिर सारे दिन भर कोई देहधारी नहीं खींचेगा, किसी की याद, किसी का प्यार, किसी का लगाव, यहां की वस्तुएं। तो शक्तिशाली बनना है तो क्या करना पड़ेगा, शक्तिशाली योग, शक्तिशाली भट्टी, शक्तिशाली वायुमंडल, शक्तिशाली संग, शक्तिशाली अध्ययन, शक्तिशाली संगीत, शक्तिशाली गीत, शक्तिशाली किताबें, शक्तिशाली धारणाएं, शक्तिशाली मर्यादाएं, शक्तिशाली दृष्टि, शक्तिशाली वृत्ति, शक्तिशाली भोजन, शक्तिशाली सेवा, डिटैच्ड, जो जितना डिटैच है उतना शक्तिशाली है, जो जितना संसार से चिपका हुआ है वो कमजोर है। शक्तिशाली बनने की विधि है शरीर से अलग हो जाओ, इसी योग को बढ़ाना है, इसी का अभ्यास और इसी का अध्ययन। तो शक्तिशाली आत्माओं की दूसरी निशानी क्या हुई, कंबाइंड है वो। तीसरी निशानी पावरफुल सोल्स की, श्री श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में है। किसकी छत्र छाया में चलते हैं? वो श्रीमत की छत्र छाया में चलते हैं। कितना नया शब्द है श्रीमत की छत्र छाया, शायद पहले नहीं आया कभी कि श्रीमत ही छत्र छाया है। दृष्टि की छत्र छाया कभी बाबा ने कहा है एक संदेश में। उन्हें यह अनुभव होता है कि हम श्रीमत की छत्र छाया के अंदर चल रहे हैं, जीवन मर्यादाओं में बंधा हुआ है। श्रीमत की छत्र छाया पर चलना अर्थात श्रीमत की गहराई को जानना। पार्टी से मुलाकात में बाबा ने कहा गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, ज्ञान स्वरूप बनो, महान योगी बनो। एक एक की गहराई में जाकर उसके अमूल्य रत्न निकालने का अनुभव करो, और इसके लिए अव्यक्त वाणियों का अध्ययन अतिशय आवश्यक है। और इसलिए निरंतर कोई भी एक महावाक्य लेना और उसका गहराई से अध्ययन करना। कुछ कुछ नशे वाली पॉइंट्स आती है, जैसे कि सतयुग में धरती और आकाश तुम्हारी मुट्ठी में होगी, और अब भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है। कैसा पॉइंट है? नशे वाला है ना। सतयुग में धरती और आकाश तुम्हारी मुट्ठी में होगी, और इस समय स्वयं भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है। तो तीसरा श्रीमत की छत्र छाया, इसे योग का प्रयोग बनाना है कि मैं आत्मा चल रही हूं और ऊपर छत्र छाया है श्रीमत की। परमात्मा श्रीमत, परमात्मा महावाक्य मेरी रक्षा कर रहे हैं। एक एक महावाक्य शक्ति है, यदि उसे जीवन में धारण कर लिया जाए तो। चौथी निशानी शक्तिशाली आत्माओं की, दृढ़ता की चाबी से सफलता के खजाने के मालिक बन गए। डिटर्मिनेशन, कोई भी चीज करेंगे तो फुल डिटर्मिनेशन के साथ। सुबह इतने बजे उठना है तो इतने बजे ही उठना है, जैसे ही बजेंगे फेंक दो रजाई, जो करना है तो करना है। विदेशियों के लिए बाबा ने कहा हां तो हां, ना तो ना। ये विशेषता दृढ़ता चाबी है, उससे क्या बन जाओ? सफलता के खजाने के मालिक बन जाओ। तो जो शक्तिशाली आत्मा होगी वो दृढ़ संकल्प वाली होगी, दृढ़ प्रतिज्ञ होगी। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञ आत्मा बनना है कि जो ठान लिया तो ठान लिया, बस एक तरफ हट जाओ, अब उधर देखना ही नहीं है। जो तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है उसे क्या लेना देना। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ली है, दवाइयां और बीमारियां और डायग्नोसिस से तुमको क्या लेना है? अब इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई करो, मेडिकल का छोड़ दो। जिस कॉलेज में पढ़ाई एडमिशन ली है उसी में फोकस करना है। ईश्वरीय कॉलेज में एडमिशन ली है, संसार के कॉलेजों को छोड़ना है। पांचवी निशानी झूला। कौन सा झूला? प्राप्तियों के झूले में झूलती रहेगी आत्मा, जैसे वो चौथा सन्यासी योगी। उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सब प्राप्त है। अप्राप्त तो कुछ नहीं, सब उपलब्ध है। अलभ्य कुछ नहीं, अनुपलब्ध कुछ भी नहीं, सब मिल गया, ये भाव। और नहीं भी होगा तो अपने आप आ जाएगा आकर्षण के नियम के अनुसार। छठवीं निशानी गीत गाते रहेंगे। कौन से गीत गाएगा? भाग्य के गीत। हृदय शिकायत के गीत नहीं गाएगा, भाग्य के गीत कि तुमने इतना सब कुछ दे दिया और कुछ भी नहीं चाहिए, इतना श्रेष्ठ जीवन दिया और क्या चाहिए, सब प्राप्त है, सब मिला हुआ है ये भाव। सातवीं निशानी नशा। कौन सा नशा? रूहानी नशा। और इस नशे के आधार पर संसार की कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी, नहीं तो संसार में कदम कदम पर आकर्षण है, हर स्थान में आकर्षण है। इस मार्ग में एक श्रेष्ठ तीव्र पुरुषार्थी के लिए भी हजारों साइट सीन्स है जो उसे अपनी ओर खींचेंगे, कभी परेशान करेंगे, कभी रोकेंगे, समस्याएं बड़ा पत्थर बनकर आएगी, अच्छे से अच्छे तैराक को भी डुबो देगी, परंतु जो दृढ़ संकल्प है बादी जिसने किया है वो नहीं रुकेगा। तो नशा आठवीं निशानी। आठवीं निशानी, जो भी कर्म करेंगे और जो भी बोलेंगे वो सब किसके लिए? सेवा के लिए। सहज लग जाएगा, हमारा जीवन संपूर्ण सेवार्थ। कुछ भी ऐसा ना हो 24 घंटे में जो हम करें और वो सेवा के लिए ना हो। इसके लिए एक एक संकल्प जो मन में उठ रहे हैं उसमें श्रेष्ठ भावनाएं हो विश्व कल्याण की। कोई कुछ भी ना कर रहा हो, केवल श्रेष्ठ संकल्प करे, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, उसके बाद नौवा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का ये जो अनुभव है, ये सफलता का अनुभव है। उसको ऐसा लगेगा कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन, ये अनुभव सहज होगा, इसमें सफलता का सहज अनुभव होगा। और सबसे श्रेष्ठ अनुभव है स्व परिवर्तन का। हम पहले ऐसा थे, अब बदल गए और ये सफलता मिली, इसका अनुभव बहुत शक्ति देने वाला है। और लास्ट, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सभी प्रश्नों से परे। जैसे वो चौथा योगी, उसके पास कोई प्रश्न नहीं, किसी को पूछने के लिए कुछ नहीं, सब प्राप्त है, कोई उलझन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले से ये भाव है कि सब मिल चुका है, सब मिला हुआ है। तो ऐसी बाबा ने आज ये तीन प्रकार की आत्माएं बताई। सबसे पहले स्नेही, स्नेही में चार, फिर सहयोगी, सहयोगी में तीन, और शक्तिशाली, उसमें भी तीन। तो मैं इन तीनों में से कौन हूं? क्या परमात्मा स्नेही हूं जिसने निरंतर यथार्थ रीति से बाप को जाना है, या वो प्राप्ति वाली आत्मा हूं, सहयोगी वाली आत्मा हूं जिसके लिए भगवान ही सब कुछ है, और तीसरा वो शक्तिशाली आत्मा है जिसमें ये सारी बातें जो बताई। ये तो स्वयं को देखना है। ईस्टर्न ग्रुप से बाबा ने मुलाकात की, ज्ञान सूर्य दाता, मिकी माउस नहीं बनना, गद्दी राजगद्दी प्रवेशता की भूमि, पंजाब ग्रुप से बात की, कुछ पार्टियों से बात की। तो इस तरह से सारी जो मुरली है फिर अध्ययन करना है, इसमें से वो कौन सी पॉइंट है जो मेरे लिए है, इसमें से वो कौन सी पॉइंट है जिस पर मुझे गहरा चिंतन करना है, मनन करना है, क्या मैं करूं कि जिससे नंबर वन स्नेही, नंबर वन सहयोगी और नंबर वन पावरफुल मैं बन जाऊं। ऐसे एक बाप से स्नेह करने वाली स्नेही आत्माओं को, ऐसे 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 ईश्वरीय कार्य में सहयोगी आत्माओं को, ऐसे शक्ति स्वरूप आत्माओं को, ऐसे ऐसे विजय को, विजय के अधिकार में रहने वाली, या विजय को जन्म सिद्ध अधिकार मानने वाली विजयी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।